मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज अक्टूबर का पहला दिन है, वर्ष है 2018 और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज अगर हम अपने रूटीन को लेकर चलें तो किसी के जीवन के प्रसंग के माध्यम से जीवन के बारे में बात करने का दिन है। तो मुझे लगता है कि अगर गांधी जी के जीवन के बारे में बात की जाए तो इससे अच्छा अवसर दूसरा कोई नहीं होगा, और सच पूछे तो मुझे यह भी लगता है कि इससे बेहतर जीवन भी शायद कोई दूसरा नहीं होगा। और मैंने गांधी जी के जीवन पर बात करने का निर्णय क्यों लिया है, इसके बारे में आप बड़े आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो मैं पहले से ही ये बात आपको बता दूं कि गांधी जयंती पर चूंकि गजेटेड हॉलीडे होती है, इसीलिए कल लाइफ मैनेजमेंट नहीं आएगा। अदरवाइज मैं गांधी जी के जन्म या जीवन को लेकर के उनके जन्म दिन पर कुछ बातें कर सकता था, तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही सही, लेकिन गांधी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बातें की जानी चाहिए। और इस बार की जो जन्मतिथि है वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से गांधी जी की जयंती की 150वीं वर्षगांठ शुरू हो रही है, 150वां वर्ष की शुरुआत हो रही है। और डेफिनेटली इस दौरान पूरे देश में अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अनेक कार्यक्रम होंगे ताकि गांधी जी का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले मित्रों, मैं एक अपील करना चाहूंगा, एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही ईमानदार अपील, और मेरी अपील बहुत छोटी सी है और सच पूछिए तो बहुत ही सामान्य सी भी है। और अपील मेरी यह है कि आप सब, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, कुछ भी हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों, मजदूरी कर रहे हों, लेकिन अगर पढ़ सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उसका नाम है सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी ने खुद लिखी है, प्लीज उसे जरूर पढ़ें। यूं कह लीजिए कि ये जो 150वीं जयंती शुरू हो रही है गांधी जी की, इसमें कम से कम एक काम करने का बीड़ा आप उठा लें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि चूंकि ये जयंती तो साल भर चलेगी, तो आप ये ना फैसला कर लें कि ठीक है साल भर के अंदर कभी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने महसूस किया होगा, इस बात का अनुभव तो आपको होगा ही कि जब किसी चीज के बारे में हम ये सोच लेते हैं कि कभी भी कर लेंगे तो फिर उसे कभी भी नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप गांधी जी की जो आत्मकथा है, जिस भाषा में भी आप पढ़ना चाहे, बहुत सी भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं, वो आप लें। और मैं यहां आपको एक बात और भी बता दूं कि गांधी जी की जो ओरिजिनल बायोग्राफी है, वो ऑटोबायोग्राफी कहना चाहिए, वो थोड़ी सी बड़ी है, उसके संक्षिप्त संस्करण भी आ गए हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म जिसमें कुछ हिस्सा निकाल दिया गया है। अगर आपको उतना वक्त नहीं है कि आप उनके संपूर्ण आत्मकथा को पढ़ सके तो कोई बात नहीं, आप संक्षिप्त को तो जरूर पढ़ें। ओरिजिनल में, ओरिजिनल गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी, तो गुजराती भाषियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो ओरिजिनल गांधी जी की गुजराती में पढ़ें, उसका स्वाद एक अलग ही होगा। और बाद में फिर जो अनुदित हुई है उनकी आत्मकथा, जिस भाषा में भी आप अपने को एक कंफर्ट महसूस करते हैं, उस भाषा में आप उनकी आत्मकथा को जरूर पढ़ें। प्लीज फ्रेंड्स, ये जरूर करें। और इसी के साथ ही मैं पेरेंट्स से भी एक अपील करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये सभी के लिए है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। दूसरी बात है कि मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि वे भी गांधी जी की आत्मकथा पढ़ें। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं कि गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा। उसका कारण है, कारण यह है, देखिए गांधी जी के बारे में जो आइंस्टीन ने कहा था, एक बात कही थी आइंस्टीन ने कहा था कि कुछ समय के बाद, मैं ज्यों के त्यों शब्द नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भावनाओं में कहीं कोई मिश्रण नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ समय के बाद शायद आने वाली पीढ़ी इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का व्यक्ति इस धरती पर विचरण करता था। यानी कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि गांधी जी वास्तव में हुए थे, ऐसा भी कोई आदमी हुआ था। तो खासकर मुझे लगता है कि आइंस्टीन की इस बात पर यकीन करने के लिए इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो उनकी आत्मकथा को पढ़कर होनी चाहिए। और मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, मैं ये आपको बता सकता हूं, लिटरेचर में भी इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जब आत्मकथा के इतिहास की चर्चा होती है और अच्छी आत्मकथाओं यानी कि ऑटोबायोग्राफी की चर्चा होती है तो उसमें सर्वोत्तम बायोग्राफीज में से एक, ऑटोबायोग्राफीज में से गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, और उससे भी बड़ी बात कि एक ईमानदार आत्मकथा मानी जाती है। मतलब अपने जीवन की कहानी को इतनी ईमानदारी के साथ लिख पाने का साहस केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जो वास्तव में सत्य को ही ईश्वर मानता हो, और मानता हो, ये नहीं कि केवल कहता हो। और गांधी जी में वह साहस था, उन्होंने करके दिखाया है। तो हमें पता तो लगे कि गांधी जी हमारे हैं तो वो वास्तव में क्या थे, कैसे थे, और साथ ही साथ ये भी पता लगे कि एक आदमी में इतनी शक्ति होती है, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, एक आदमी की कितनी क्षमताएं होती हैं और किस तरीके से वह अपनी इन क्षमताओं को बढ़ा सकता है, कैसे कैसे हमारी क्षमताएं बिखरने लगती हैं, कैसे हमारे अंदर की जो केंद्रीय भावनाएं हैं उन्हें हम बचा कर रख सकते हैं। नो डाउट कि उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, अंदर से भी जूझना पड़ेगा और बाहर के लोगों से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन इन सब पर हमें विश्वास तब होगा जब हम सच गांधी जी की एक बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गांधी जी पर तीन बड़ी खूबसूरत फिल्में आई हैं जो मैंने देखी, हो सकता है इससे और भी फिल्में आई हों। एक तो जो एटनबरो की फिल्म है गांधी जी के ऊपर, वो आप सब जानते ही हैं, उसे आप सबने देखा ही होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त दो और फिल्में हैं। एक फिल्म है द मेकिंग ऑफ महात्मा, हिंदी में है द मेकिंग ऑफ महात्मा, शायद हिंदी उसमें दिया हुआ, श्याम बेनेगल साहब की बनाई हुई है। आपको मालूम है कि गांधी जी जो गांधी जी बने उसकी शुरुआत बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए थे वहां से हुई है, सारे प्रयोग उन्होंने वहीं किए थे और फिर उन्हें इंडिया में लौटने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। द मेकिंग ऑफ महात्मा बहुत खूबसूरत फिल्म है और श्याम बेनेगल साहब तो जो बनाते हैं फिल्में उनकी तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी एक और भी फिल्म आई गांधी माई फादर, गांधी माई फादर बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही भावुकता से भरी हुई फिल्म है। उसमें तो जो रोल है, जो आर्टिस्ट है, उनको देख करके आप अचंभित हो जाएंगे। मित्रों यह भी आपको फिल्म देखनी चाहिए, कम से कम आप समझें तो कि जो व्यक्ति है वो कौन था, उसको संपूर्णता में जाने। संपूर्णता में जाने की बात, जानने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर हम सब किसी भी व्यक्ति को बहुत उसके छोटे से हिस्से के अनुरूप जानते हैं। किसी से सुन लिया, कहीं छोटा सा पढ़ लिया, अरे भैया 70-80 साल की उसने जिंदगी जी है, आपने 70-80 मिनट भी उसे जानने और समझने में नहीं लगाए हैं और फिर आप उस पर अपने वक्तव्य जारी कर देते हैं कि वह महान था या वह बहुत बेकार था, वह फालतू का आदमी था, जबरदस्ती लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि गांधी जी के आलोचक भी कम नहीं है, आलोचक होना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मित्रों मुझे लगता है कि आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर किसी की आलोचना करना और साथ ही साथ किसी की प्रशंसा भी करना, पता नहीं क्यों मुझे सही मालूम नहीं पड़ता। हाँ, तथ्य आपको मालूम होने चाहिए और फिर आप उनकी अपने ढंग से समीक्षा कीजिए, वो अधिकार हम सब के पास है। देखिए गांधी जी भी एक मनुष्य ही थे, राइट, मनुष्य ही थे। तो जो इतने लंबे समय तक धरती पर रहा हो और हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में रहा हो, स्वाभाविक है कि उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां भी की होंगी, क्योंकि सारे निर्णय लेने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं और उन निर्णयों के बड़े जबरदस्त प्रभाव भी पड़ने हैं, तो कुछ गलतियां ही हुई होंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन की है शब्द ज्यादा सही नहीं होगा, उनसे गलतियां हुई हैं। की है में तो यह होता है कि जानबूझकर किया गया नहीं, यह ईमानदारी तो उनमें गजब की थी। लेकिन आप सोच समझ कर कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ होने के नाते आपको दूरदर्शी होना पड़ता है। आप शतरंज की चाल चल रहे हैं, अभी ही चाल को आपको फाइनल नहीं होना है, आप आगे का सोच करके चाल चलते हैं। हो सकता है कि कोई चाल गलत हो गई हो, कई चाल गलत हो गई हो, तो आप आलोचना से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि कोई निर्णय मत लीजिए, कोई काम मत कीजिए, कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, सिर्फ एक बात के कि उसने कुछ नहीं किया या वो कुछ नहीं करता है, चलिए बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो निर्णय लेगा, जो देश की गतिविधियों के केंद्र में होगा, डेफिनेटली उससे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। तो हम जाने तो सही मायने में कि ये व्यक्ति था क्या, इसकी विशिष्टता क्या थी, कैसे इस आदमी में इतनी जबरदस्त त्याग की भावना थी, कैसे इस व्यक्ति ने क्रोध एंगर को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तब्दील कर दिया। यह व्यक्ति जिसका नाम गांधी है बहुत जिद्दी व्यक्ति थे, आप पढ़ करके देखिए, बहुत जिद्दी व्यक्ति थे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी जिद्द को अपनी आत्मशक्ति में परिवर्तित कर दिया। वो जिद्द नहीं थी कि दूसरे लोग परेशान हो जाएं, वो जिद्द नहीं थी जिससे राष्ट्र को या समाज को नुकसान उठाना पड़े, वह जिद्द थी कि आप उन्हें उनके दृढ़ प्रतिज्ञ से विचलित नहीं कर सकते। तो उस जिद्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि जितने भी नकारात्मक तत्व हो सकते हैं अगर गांधी जी में वो थे, तो आप देखिए कि कैसे वो सकारात्मकता में तब्दील हो जाते हैं, और कितनी बड़ी बात आपको उन जगह जगह पर देखने को मिलेगी कि प्रलोभन आए, दबाव आए, अपने हित की बातें आई, पत्नी से टकराव की स्थितियां आई, बच्चों को नकारने की बात आई। नकारने का मतलब है कि नहीं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने निर्णय लेने में एक सेकंड नहीं लगाया, एक सेकंड नहीं लगाया। मित्रों, ये सब कहने की बात नहीं है, ये आपको उनकी आत्मकथाओं में मिलेंगे। और गांधी जी पर तो बहुत लिटरेचर लिखा गया है, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप लोग अगर थोड़ा और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उन पर लिखे गए दूसरे जो लिटरेचर हैं, जो समीक्षात्मक हैं, आप उन्हें भी पढ़ें। और मुझे लगता है कि जो स्वच्छता अभियान है, हम अपने जीवन में कम से कम अपने अपने स्तर पर इसे लागू करके और उनकी आत्मकथा के माध्यम से सही मायने में उन्हें जानकर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो दोस्तों, इसी अपील के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सभी की ओर से, अब एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उस महामानव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, इतना ही, परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।